नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बनवारी लाल पांडर और आज वे हमें अधिक दूध उत्पादन और संकर नस्ल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में।
किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में 18.5 करोड़ गायों की संख्या है। इन गायों में 61 नस्ल हैं, लेकिन जो दुधारू नस्ल हैं वो केवल 5 हैं। और ये 5 दुधारू नस्ल हैं साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, गिर और राठी। ये पांचों की पांचों नस्लें हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं। सारी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहीं से उत्पन्न हुई हैं सारी की सारी। और अधिकांश जो नस्लें हैं वो पाकिस्तान से उत्पन्न हुई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में दुधारू नस्लों की संख्या भी कम है और इन पशुओं की संख्या भी कम है। 18.5 करोड़ में से 70% पशु ऐसे हैं जो किसी भी नस्ल के नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मिलीजुली नस्ल है, कोई एक नस्ल के नहीं है, ये एक नस्ल के गुण इनमें नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो हम अपनी जो दुधारू नस्लें हैं उनको, उनका संरक्षण करें, उनको बचा कर रखें, उनका दूध उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन कहने को तो भारत विश्व के नक्शे पे पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में, फिर भी हमारी जो प्रति पशु, प्रति गाय, प्रति ब्यांत जो दूध उत्पादन है वो बहुत ही कम है। 187 किलोग्राम प्रति गाय प्रति ब्यांत दूध उत्पादन है भारतवर्ष का। ये बड़े ही शर्म की बात है। इसके तुलना में जो बाहर के देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर प्रति पशु प्रति ब्यांत 5000 किलो दूध है। आप देखिए कितना एक गैप है, हमारे देश में सिर्फ 187 किलो और बाहर के देशों में 5000 किलो। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें गायों में इस गैप को कम करने के लिए संकर नस्ल की ज़रूरत है। संकर नस्ल में हम जो बाहर से होल्स्टीन फ्रीजियन का या जर्सी का टीका मंगवाकर हमारी गायों को ज्ञापन करवाएंगे, तो जो संकर नस्ल पैदा होगी उसका दूध हमारी नस्ल की तुलना में 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगा। जैसे हमारी गाय 1000 लीटर दूध देती है प्रति ब्यांत में, तो जो संकर नस्ल आएगी उसका दूध 3000 किलोग्राम हो जाएगा। और ये करिश्मा सिर्फ 3-4 साल में ही आप कर सकते हैं। सबसे कम समय में इतना दूध उत्पादन बढ़ाना सिर्फ संकर नस्ल के द्वारा ही संभव है, और कोई विधि इतना दूध कम समय में नहीं बढ़ा सकती। इसलिए संकर नस्ल की हमें बहुत ही आवश्यकता है। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो संकर नस्ल पैदा करने की तरफ ध्यान दें। अपने जो पशु हैं जो बिल्कुल कम दूध देते हैं और जो किसी भी नस्ल के नहीं हैं, उनको बाहर से ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन या जर्सी का टीका मंगवा कर लगवाएँ, और जो संकर नस्ल होगी उससे आप अधिक दूध प्राप्त करें। दूध बढ़ाने के अलावा संकर नस्ल के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और इन फायदों से किसान को बहुत लाभ होता है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि संकर नस्ल की जो बछिया है उसमें बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है, और वो बछड़ी सिर्फ 2.5 साल में आपको बच्चा दे देगी। जबकि जो आपकी जो नस्ल है, हमारे देश की जो नस्ल है, वो 3.5 से 4 साल में पहला बच्चा देगी। तो आप 1 साल, कम से कम 1-1.5 साल पहले ही आपकी गाय दूध देना शुरू कर देगी, जो संकर नस्ल की गाय है वो। इससे आपको जो दूध उत्पादन है वो जल्दी शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा आमदनी होगी। आमदनी पहले ही शुरू हो जाएगी आपकी, कम से कम 1.5-2 साल पहले। दूसरा फ़ायदा संकर नस्ल का ये है कि जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी संकर नस्ल में कम है। जैसे हमारी नस्लों में 2 ब्यांत का अंतर है वो कम से कम 20 महीने है, लेकिन संकर नस्ल में सिर्फ 13-14 महीने ही है 2 ब्यांत का अंतर। ये भी किसान को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपका पशु ज़्यादा दिन दूध में रहेगा और जो शुष्क पीरियड, जो पशु का शुष्क काल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने ही पशु आपको दूध नहीं देगा, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं वो करीब 4-5 महीने दूध नहीं देती हैं हमें। तो संकर नस्ल का दूसरा फ़ायदा ये है कि वो जल्दी जल्दी ब्याती हैं, सिर्फ 13-14 महीने में दूसरी बार ब्या जाएगी। हमारे देश में कौन सी नस्ल कामयाब है, तो इसका सरल सा जवाब ये है कि हमारे देश में हमने प्रयोग किए हैं, और प्रयोग में हमने पहले होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस और रेडडेन के टीके हमारे गायों में लगवाए, और हमने इन नस्लों के संकर नस्ल पैदा की। तो हमने प्रयोग में ये पाया कि हमारे देश के जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी है। तो इन दोनों नस्लों के टीके हमारी सरकार बाहर से मंगवाती है और आपको उपलब्ध करवाती है। तो इन दोनों नस्लों से हम संकर नस्ल बनवाएं और वो संकर नस्ल हमारे देश में कामयाब है। जैसे पहले आपने देसी नस्ल में टीका लगवाया तो आपकी जो संकर नस्ल की जो गाय आएगी उसमें 50% बार के गुण होंगे। अगर दूसरी बार आप बार का टीका लगवाओगे तो उसमें 75% गुण हो जाएंगे। इस हिसाब से हमने प्रयोग से ये पाया है कि बाहर की नस्ल के 50% से लेके 62.5% तक गुण होने चाहिए, 62.5% से ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। इससे अगर हम आगे जाएंगे, जैसे 75% तक जाएंगे, तो हमारा दूध उत्पादन तो इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन बीमारियां ज़्यादा आ जाएंगी और उन पशुओं को आहार भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए हमने प्रयोगों से ये पाया है कि बाहर की नस्लों के गुण हम 62.5% के रखें, उससे आगे न जाएं। किसान भाइयों, आपने भी सुना होगा या कहीं देखा होगा, कई लोग बताते होंगे कि संकर नस्ल में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं ये आपको बतलाऊंगा कि बीमारियां एक या दो बीमारियां हमने संकर नस्ल के साथ बाहर से इंपोर्ट की हैं, लेकिन उन दोनों बीमारियों को भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। पहली जो खतरनाक बीमारी है वो है मुँह खुर। मुँह खुर आप सबको पता है कि पशु के मुँह में छाले हो जाते हैं, खुर में छाले हो जाते हैं और दूध बिल्कुल ही कम कर देता है पशु। लेकिन इस रोग को अगर साल में आप 6 महीने के अंतराल पर 2 टीके लगवा लें तो ये रोग आपके पशुओं के पास नहीं आएगा। आप इस रोग को बिल्कुल ही कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हरियाणा सरकार आजकल कर रही है, और आप देख रहे हैं कि मुँह खुर रोग बिल्कुल ही कम हो गया हमारे प्रदेश में, ना के बराबर है। दूसरा रोग जो संकर नस्ल में आता है वो आता है चिचड़ों के द्वारा। जो चिचड़े होते हैं उनमें परजीवी होते हैं, जैसे मनुष्य में मलेरिया की बीमारी होती है ना, उसी तरह से हमारे पशुओं में चिचड़ों के द्वारा वो जीवाणु फैलते हैं। जैसे जीवाणुओं का नाम है थाइलेरिया, बबेशिया और एनाप्लाज्मा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका सबसे सरल तरीका है, जैसे कि हम मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों का कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से आप पशुओं पर चिचड़े न लगने दें या उनको चिचड़ों को बार बार मारते रहें तो आपके पशुओं में ये रोग नहीं आएंगे। इसके अलावा देसी नस्ल और संकर नस्ल में बीमारियों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये 2 बीमारियाँ ही ऐसी हैं जो संकर नस्लों में ज़्यादा होती हैं। एक और अहम सवाल है कि हम ये जो बाहर की नस्लें हैं वहाँ बाहर तापमान कम होता है, इतनी गर्मी नहीं होती, तो हमारी संकर नस्ल में गर्मी सहन करने की शक्ति थोड़ी कम होती है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती कि वो यहाँ जी ना सके। संकर नस्ल यहाँ अच्छी तरह से कामयाब है। आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी गर्मी और बरसात के वक्त। पशुओं को अच्छे हवादार और छायादार जगह पर बांधें जहाँ अच्छी हवा लगती हो। अगर हवा नहीं लगती हो तो जैसे ज़्यादा नमी हो वायु में और गर्मी भी ज़्यादा हो तो आप पंखे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल खुली जगह और छायादार जगह में पशुओं को रखेंगे तो आपको पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनको ज़्यादा इतनी गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरी बात, गर्मी और अधिक नमी, वर्षा और गर्मी के टाइम में आप लोगों को इनके खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान से मेरा मतलब है कि इन गायों को, संकर नस्ल की गायों को सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे के बाद ही चारा या दाना खिलाएं। बीच में दिन में जब गर्मी होती है तो इनको चारा या दाना नहीं खिलाएं। इससे क्या होगा कि एक तो आपका चारा दाना अगर ठंडे समय में आप खिलवाएंगे तो आपकी गाय संकर नस्ल की गाय जो है वो चारा अच्छा खाएगी, उसको ज़्यादा चारा खाएगी वो। अगर आप गर्मी में खिलाएंगे तो चारा कम खाएगी और उसको गर्मी, क्योंकि चारा खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो गर्मी आपके मौसम में है ही और शरीर में और गर्मी होगी तो डबल गर्मी होगी। तो इसलिए संकर नस्ल के पशुओं को आप दिन में चारा ना खिलाएं, सिर्फ सुबह जल्दी और शाम को 6 बजे के बाद ही चारा खिलाएं इनको, और पानी इनको अच्छी तरह से पानी पिलाएं, पूरे दिन इनके पास पानी होना चाहिए ताकि इनको गर्मी कम लगे। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपको डेयरी करनी है या दूध उत्पादन करना है तो आप कम दूध वाले पशु रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसका कारण ये है कि पशु जैसे 400-500 किलोग्राम का होता है तो उसको जो मेंटेन करने के लिए उसके शरीर के रखरखाव के लिए दोनों पशुओं को चाहिए, वो संकर नस्ल का है, देसी का है या भैंस है, उनको बराबर का ही चारा या दाना चाहिए। जो पशु ज़्यादा दूध देगा उसी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको रखरखाव के लिए तो चारा बराबर चाहिए आपको। अब दूध के लिए जो कोई पशु हो, चाहे वो देसी पशु हो या संकर नस्ल का पशु हो, 3 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना देते हैं, तो जितना दूध अधिक होगा उतने ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि संकर नस्ल के पशुओं को कोई विशेष आहार की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा आहार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन संकर नस्ल के पशु अगर आप हरा चारा ज़्यादा खिलाओगे उनको तो ये दूध ज़्यादा देंगे। ये भी आपके लाभ की बात है, क्योंकि दाने के बजाय आप हरा चारा ज़्यादा खिलाओ तो आपको कम पैसे लगेंगे चारा खिलाने के लिए और आपका लाभ ज़्यादा होगा। तो संकर नस्ल के पशुओं में आप हरे चारे पर ज़्यादा ध्यान दो, और हरा चारा अगर आप बरसीम वगैरह खिला रहे हो तो दाना उसका काफ़ी कम कर सकते हो। और दूसरी बात, संकर नस्ल, संकर या देसी कोई भी पशु हो, उसमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है, वो आप ज़रूर दें, और संकर नस्ल में से विशेषकर आप 2% दाने में खनिज लवण दें, इससे पशु में आवश्यक तत्वों की कमी नहीं होगी और वो दूध अच्छा देगा। अब किसान भाइयों, आपकी आम शिकायत रहती है कि संकर नस्ल के गायों का दूध पतला होता है, यानी कि उसमें वसा की मात्रा कम होती है। हाँ, ये सही है, उसमें वसा की प्रतिशत कम होती है। जैसे संकर नस्ल के गायों में वसा की प्रतिशत 3.5 से 4 होती है, और हमारी जो देसी गाय हैं उनमें वसा की मात्रा 4 से 5% होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी सोचें कि एक दिन में हमें कितनी वसा मिलेगी, तो संकर नस्ल के पशु हैं वही अव्वल रहेंगे, क्योंकि इनका दूध ज़्यादा होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे अपनी कोई देसी गाय है और वो 5 किलो दूध दे रही है, उसमें 5% वसा है, तो उसकी कुल वसा की मात्रा एक दिन में 250 ग्राम हुई। और जो संकर नस्ल की गाय है वो मान लो 10 किलो दूध दे रही है और उसमें वसा की मात्रा 4% है, तो संकर नस्ल में के दूध में वसा की मात्रा 400 ग्राम होगी। तो जो कुल मात्रा है वसा की, वो फिर भी संकर नस्ल में ज़्यादा मिलेगी आपको। हालांकि दूध पतला होगा, उसमें वसा का प्रतिशत कम होता है, लेकिन एक दिन में वसा की मात्रा संकर नस्ल में ज़्यादा होगी, न कि देसी नस्ल में।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।